آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں اسلم بے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے نئی دلی میں سابق نائب وزیر اعظم لال کرشن آڈوانی کو بھارت کا اعلی ترین شہری ایوارڈ بھارت رتن پیش کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ لوک سبھا کے یہ انتخابات محض حکومت سازی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے ہیں. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ امید ہے کہ بھارت کی مجموعی گھریلو پیداوار کی شرح رواں مالی سال کی چوتھی سہ ماہی میں 8% سے زیادہ رہے گی. بھارت کے ٹینس کے مایہ ناز کھلاڑی روہن بوپنا اور آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب میتھیو ایبڈن نے میامی اوپن کا خطاب جیت لیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج سابق نائب وزیر اعظم لال کرشن آڈوانی کو ملک کے اعلی ترین سیویلین ایوارڈ بھارت رتن سے سرفراز کیا. صدر جمہوریہ نے نئی دلی میں جناب آڈوانی کی رہائش گاہ پر جا کر انہیں یہ ایوارڈ پیش کیا. اس موقع پر نائب صدر جگدیپ دھنکھڑ اور وزیر اعظم نریندر مودی، سابق نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امت شاہ اور جناب آڈوانی کے ارکان خاندان بھی وہاں موجود تھے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا ہے کہ بھارتی سیاست کی سرکردہ شخصیت لال کرشن آڈوانی نے 7 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک پختہ عزم، لگن اور غیر معمولی مہارت کے ساتھ ملک کی خدمت کی. محترمہ مرمو نے کہا کہ ثقافتی حب الوطنی کے اپنے نظریے کے ساتھ جناب آڈوانی نے سماجی اور سیاسی منظرنامے میں دہائیوں تک سخت محنت کی اور وہ اہم تبدیلیاں لائے. صدر جمہوریہ نے کہا کہ جب ایمرجنسی سے بھارت کی جمہوریت کو خطرہ لاحق تھا، تب اپنے جانباز جذبے کے ساتھ انہوں نے جابرانہ طاقت سے ملک کو بچانے میں مدد کی. محترمہ دروپدی مرمو نے کہا کہ بھارت کے ثقافتی احیاء کے لیے جناب آڈوانی کی طویل اور انتھک جد و جہد 2024 میں ایودھیا میں شری رام مندر کی تعمیر نو کے ساتھ انجام تک پہنچی. صدر جمہوریہ نے کہا کہ ایک رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے جناب آڈوانی کے مذاکرات میں بھروسے کی وجہ سے پارلیمانی روایات کو فروغ حاصل ہوا. صدر جمہوریہ نے کہا کہ وزیر داخلہ اور نائب وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے ہمیشہ قومی مفادات کو اولین ترجیح دی، جس سے ان کی ہر پارٹی کے لوگوں نے تعریف کی اور وہ ان کا احترام کرتے ہیں. صدر جمہوریہ نے کہا کہ آزادی کے بعد جناب آڈوانی ان چند سیاسی رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے قومی ترجیحات کو کامیابی کے ساتھ نئی شکل دی اور ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے 1974 میں کچا تیوو جزیرہ سری لنکا کے سپرد کرنے پر پاکستان کانگریس کی نکتہ چینی کی ہے. جناب مودی نے دعویٰ کیا کہ بھارت کے اتحاد، سالمیت اور مفادات کو کمزور کرنا 75 سال تک کانگریس کا کام کرنے کا طریقہ کار رہا ہے. تمل ناڈو بی جے پی کے سربراہ کے انا ملائی نے آر ٹی آئی کے ذریعے جو دستاویزات حاصل کی ہیں ان سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ بھارت نے کس طرح کچا تیوو جزیرے کا کنٹرول سری لنکا کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اس کے بعد ہی وزیر اعظم نے یہ بیان دیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ یہ حقیقت نہایت تعجب خیز اور حیرت انگیز ہے کہ کانگریس نے کس طرح بغیر سوچے سمجھے کچا تیوو جزیرہ سری لنکا کو سونپ دیا. انہوں نے مزید کہا کہ اس سے ہر بھارتی شہری کو غصہ ہے اور عوام کے ذہن میں یہ بات پھر سے جاگ اٹھی ہے کہ کانگریس کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. بی جے پی کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج میرٹھ میں ایک ریلی سے خطاب کر کے اتر پردیش میں چناؤ مہم کا آغاز کیا. ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات محض حکومت بنانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک اور دنیا کی تیسری سب سے بڑی اقتصادی طاقت بنانے کے لیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب بھارت دنیا میں 11ویں سب سے بڑی معیشت تھی تو بھارت میں غریبی کی شرح میں اضافہ ہو رہا تھا. وزیر اعظم نے کہا کہ جب بھارت دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت بنا تو 25 کروڑ سے زیادہ عوام غریبی کے دائرے سے باہر آئے. وزیر اعظم مودی نے کہا کہ وہ ملک کو بدعنوانی کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے ایک بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اسی وجہ سے بڑے بدعنوان لوگ آج سلاخوں کے پیچھے ہیں. بی جے پی نے میرٹھ لوک سبھا حلقے سے ارون گوول کو میدان میں اتارا ہے، جنہیں ٹی وی سیریل رامائن سے شہرت حاصل ہوئی تھی. راشٹریہ لوک دل کے صدر جین چودھری اور بی جے پی کے دیگر بہت سے رہنما بھی اس موقع پر موجود تھے. उत्तर प्रदेश में सातवें मरहले के तहत पोलिंग कराई जाएगी। अफुस्सन इत्तेहाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस INDIA ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी समेत मुख्तलिफ मामलात के खिलाफ एहतजाज करने के लिए आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली का एहतमाम किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत अपोजिशन पार्टियों को डराने धमकाने के लिए मुख्तलिफ इदारों का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि इन इंतखाबात में कोई मुनसिफाना माहौल नहीं है। जनाब खड़गे ने कहा कि ये इलेक्शन जमहूरियत और आईन को बचाने के लिए है और अपोजिशन को मुत्तहिद होकर मुकाबला करना चाहिए। कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी के रहनुमा के अलावा पंजाब के वजीर आला भगवंत मान और जेल में बंद दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता और इत्तेहाद के दीगर लीडरों ने इस महारैली में शिरकत की। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट वजीर और आम आदमी पार्टी के रहनुमा कैलाश गहलोत से कल 5 घंटे तक पूछताछ जारी रखी। उनसे ये पूछताछ दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाले से मुतालिक कालेधन को मुबैना तौर पर जायज बनाने के एक केस के सिलसिले में की गई। पूछताछ के बाद ईडी के दफ्तर से बाहर आते हुए जनाब गहलोत ने नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने एजेंसी की तरफ से पूछे गए सभी सवालों का जवाब दिया और वो तहकीकात में अपना तआवुन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि ये उन्हें दूसरा समन भेजा गया था क्योंकि वो पहली मरतबा तकरीबन एक महीने पहले हाजिर नहीं हो सके थे क्योंकि दिल्ली असेंबली का बजट इजलास जारी था। इसी दौरान दिल्ली के ट्रांसपोर्ट वजीर कैलाश गहलोत को ईडी की तरफ से भेजे गए एक समन के बारे में आम आदमी पार्टी के रहनुमा आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मुमताज रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाना एक साजिश है जिसका मकसद दिल्ली में मुंतखबा सरकार को हटाना है। जम्मू कश्मीर में आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेशेनजर जम्मू के रियासी पार्लियामानी हल्के के 372 पार्लियामानी पोलिंग स्टेशनों को हसास करार दिया गया है। जम्मू के हमारे नमानेगार ने बताया है कि हुक्काम पूरे पार्लियामानी हल्के में खासतौर पर हसास इलाकों में सिक्योरिटी के इंतजाम में मसरूफ हैं। हिफाजती दस्ते अपने फराइज की अंजामदेही 1 अप्रैल से शुरू करेंगे जिसके तहत वो सरहद पर पाकिस्तान की गोलाबारी के खतरे और दीगर इम्कानी खतरों के पेश नजर जामे हिफाजती इंतजाम करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि मौजूदा माली साल की चौथी सहमाही में भारत की जीडीपी की शरह तरक्की 8% से ज्यादा रहने की उम्मीद है। वो मुंबई में सरमायाकारी सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि इफरात जर पर बेहतर अंदाज से कंट्रोल करने और मैक्रो इक्तसादी इस्तेहकाम के असरात के तनाजुर में माली साल 2023-24 में भी मईशत की शरह तरक्की उसी सतह पर रहने का इम्कान है। एशिया में भारत तीसरी सबसे बड़ी मईशत है और अक्टूबर से दिसंबर तक की सेमाही में सालाना बुनियाद पर शरह तरक्की 8.4% रही जबकि सबका सेमाही में यह 7.6% रिकॉर्ड की गई थी। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि तीसरी सेमाही में 8.4% की शरह तरक्की के तनाजुर में मुख्तलिफ इदारों ने भारत के लिए जीडीपी की तरक्की के अपने तखमीने में इजाफा किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के बानी और एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून के तहत एक केस में फर्द जुर्म दाखिल की है। उन पर इल्जाम है कि न्यूज पोर्टल ने चीन हामी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए फंड्स हासिल किए थे। अफसरान के मुताबिक ये फर्द जुर्म तकरीबन 9000 सफहात पर मुश्तमिल है जिनमें वो जानकारी भी शामिल है जो तहकीकात के दौरान मुख्तलिफ छापों में जब्त किए गए 480 इलेक्ट्रॉनिक आलात में मौजूद है। इसमें पुरकायत के खिलाफ कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा न बताए जाने के इल्जाम भी शामिल हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने इस केस की मजीद सुनवाई के लिए अगले माह की 16 तारीख मुकर्रर की है। न्यूज क्लिक के बानी को दिल्ली पुलिस ने उसके एचआर सरबराह अमित चक्रवर्ती के साथ पिछले साल 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इन लोगों को अमरीका के रास्ते चीन से गैर कानूनी रकम हासिल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर में इस साल अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले अकीदतमंदों की सलामती और तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। जिसमें कुदरती आफात से पैदा होने वाले हालात से निपटने और बचाव कार्रवाई पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। उम्मीद है कि सालाना अमरनाथ यात्रा जून के अवाखिर में शुरू होगी और तकरीबन 2 महीने जारी रहेगी। इसमें मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद बाबा बर्फानी का आशीर्वाद हासिल करने के लिए शामिल होते हैं। चूंकि यात्रा दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते से होकर गुजरती है, इसलिए हुक्काम किसी भी तरह के हादसे की रोकथाम और हंगामी सूरतहाल से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। 1300 तरबियत याफ्ता सिपाहियों पर मुश्तमिल कोह पैमा इमदादी टीम यात्रा के रास्ते पर अकीदतमंदों के सामने आने वाले चैलेंजों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिलहाल पुलिस, एनडीआरएफ और नीम फौजी दस्तों समेत मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों को सांबा में पहाड़ी इलाकों में खसूसी तरबियत दी जा रही है। आज दुनियाभर में ईस्टर का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये दिन ईसाई अकीदे के मुताबिक ईसा मसीह को मसलूक किए जाने के बाद दोबारा नमोदार होने की याद में मनाया जाता है। कल रात मुल्क भर के मुख्तलिफ गिरजाघरों में ईस्टर के दुआइया जलसों का एहतमाम किया गया। दुनिया भर में ईसाई बिरादरी के बकिया लोगों के साथ साथ नागालैंड में ईस्टर संडे मनाया जा रहा है। रियासत भर के गिरजाघरों में इजहार तशक्कुर के साथ दुआओं के लिए खसूसी ईस्टर जलसों का एहतमाम किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईस्टर के मौके पर लोगों, खासतौर पर ईसाई बिरादरी को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा है कि यह त्यौहार ईसा मसीह के दोबारा नमोदार होने के जश्न का मौका है और यह प्यार और रहमदिली की अलामत है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि ईस्टर का त्यौहार प्यार, मोहब्बत और दरगुजर करने के असर की याद दिलाता है। वजीर आजम मोदी ने अपने पैगाम में कहा है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि पुरउम्मीदी और तजदीद का पैगाम सभी की हौसला अफजाई करेगा और ये दिन सभी लोगों को मुत्तहिद रहने की तरगीब देगा। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में बहुत शदीद बारिश के इम्कान के साथ पीर तक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, मिजोरम और त्रिपुरा के दूरदराज के इलाकों में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। उसने कहा है कि शिमाल मशरकी भारत, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में अगले महीने की 5 तारीख तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और दूर दूर तक हल्की बारिश होगी। IMD ने ओडिशा, गंगा के तराई वाले इलाके, मगरबी बंगाल, झारखंड, मशरकी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में आज के लिए धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने के साथ हल्की से मुतदिल बारिश की भी पेशगोई की थी। IMD के मुताबिक अगले कुछ रोज के लिए वस्ती और जजीरानुमा भारत में लू और रात को गर्म हवाएं चलने का इम्कान है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने दिल्ली में धूल भरी आंधी के साथ जुजवी तौर पर बादल छाये रहने की पेशगोई की है। भारत के मुमताज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के उनके साथी मैथ्यू एब्डन ने कल मियामी ओपन में मर्दों के डबल्स के फाइनल में तारीखी जीत हासिल की है। इस जोड़ी ने क्रोएशिया के इवान दोदिच और अमरीका के ऑस्टिन क्रैजिसिक की जोड़ी को 6-7, 6-3, 10-6 से शिकस्त दी। 44 साल बोपन्ना ATP मास्टर्स 1000 टाइटल जीतने वाले सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा वो ATP मास्टर्स 1000 के सभी 9 मुकाबलों के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। इस जीत के साथ ही ATP की दर्जाबंदी में उन्होंने अपना आला मकाम फिर से हासिल कर लिया है। IPL क्रिकेट में विशाखापट्टनम के YS राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान मैच खेला जा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने जीत के लिए 192 रन का निशाना रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाए थे। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में साबिक नायब वजीर आजम लालकृष्ण आडवाणी को भारत का आला तरीन शहरी अवार्ड भारत रत्न पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा के ये इंतखाबात महज हुकूमत साजी के लिए नहीं है बल्कि भारत को एक तरक्कीयाफ्ता मुल्क बनाने के लिए है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि उम्मीद है कि भारत की मजमूई घरेलू पैदावार की शरह रवा माली साल की चौथी तिमाही में 8% से ज्यादा रहेगी। भारत के टेनिस के मायानाज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के उनके हममनसब मैथ्यू एब्डन ने मियामी ओपन का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।